दोस्तों, कहानी के पहले भाग में आपने पढ़ा कि मेरे पति अंदर का शर्मीलापन भगाकर मुझे सेक्सी नारी बनाना चाहते थे। एक रात उन्होंने मुझे अपने दोस्त के सामने चोदा और फिर मुझे अपने दोस्त से चुदवाकर मेरी झिझक दूर कर दी। उसके बाद बीमारी के चलते मेरे पति को अस्पताल में दाखिल कराया तो मेरे पति वहाँ मुझे डॉक्टर को पटाने के लिए बोलने लगे। डॉक्टर मुझे भी अच्छा लगा तो मैंने भी कोशिश शुरू कर दी। अब आगे मेरी खिली हुई जवानी पर पूरा जोश डॉक्टर अतुल के सामने खुलकर दिख रहा था। मुझे उस हाल में देखकर उनकी आंखें बार बार मेरे उजागर बदन पर घूम रही थी। साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था, मेरे केश बिखरे हुए थे, मेरे सिर पर कुमकुम का टीका भी पसीने के कारण फैला हुआ था और मांग में से सिंदूर की पतली सी धार बहकर छोटी सी रेखा से कपाल पर दिख रही थी। भारतीय नारियों के हिसाब से मैं कद काटे में काफ़ी आकर्षक हूँ। करीब 5 फुट 4 इंच लंबा कद, घने काले लंबे बाल जो खोल देने पर मेरे सुआकर भरे कोल कूल्हों को भी ठक देते थे। मांग में बिखरा हुआ सिंदूर और कपाल पर कुछ फैली हुई लाल बड़ी बिंदी की लालिमा, मेरे गोल सुंदर चेहरा, एक होठ के नीचे कोने में कामुक सा काला तिल, बालों की लठ और इतना रोने के बाद आंखों की पलकों से बाहर फैला हुआ काजल डॉक्टर अतुल देखते ही रह गए। उलझन भरी प्रतिक्रिया देखकर उस बड़े ही संकट भरे हालात में भी अचानक से रोते रोते वो मेरे होठों पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कान देखकर चौंक उठे। वैसे भी मैं हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा चुलबुले कहते रहते थे, साफ साफ बोलने से झिझकती नहीं थी मैं। इसके अलावा कई बार मैं कोई न कोई बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ती थी या किसी के साथ बात करते हुए बेवजह मुस्कुरा देती थी। ज़्यादातर साड़ी पहनती थी जो नाभि के काफ़ी नीचे बंधी हुई थी, जिसकी गांठ का स्थान देखकर किसी मर्द के मन में ये उम्मीद जाग जाए कि काश ये थोड़ी और नीचे होती। मेरे बदन का सबसे ज़्यादा आकर्षक मेरे सुआकर गोल दो नितंब, गालों का कामुक घुमाव, उनके बीच में जो दरार का निशान साड़ी में भी दिख रहा था। डॉक्टर अतुल के इतना ढांढस देने के बावजूद मेरे आंसू फिर भी नहीं रुक रहे थे। डॉक्टर अतुल ने स्नेहपूर्ण मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैडम आप चिंता मत कीजिए, यहाँ का सारा स्टाफ आपकी हेल्प करेगा, और अपना विजिटिंग कार्ड मुझे दिया। मैंने डॉक्टर अतुल का हाथ थाम कर उनको अपने करीब खींचकर आंसू भरी आंखों से कहा, डॉक्टर साहब अब आप मेरे जेठ हो, मेरे पति की ज़िंदगी आपके हाथों में है। मेरे पति का ऑपरेशन करीब 4.5 घंटे चला। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद जब डॉक्टर अतुल बाहर आए तो मेरे पास आकर बोले, मिसेज राज ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। तभी नर्स ने कुछ दवाइयाँ लाने को कहा। मुझे कहाँ से दवाइयाँ लानी है कुछ पता नहीं था। उलझन में देखकर डॉक्टर अतुल ने मेरा हाथ पकड़ा और दवाइयों के काउंटर पर ले जाकर दवाई दिला दी। मेरे पति की बेहोशी की वजह से मैं वहाँ से आईसीयू में ऑपरेशन के बाद की निगरानी के लिए शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू में ले जाने के बाद 2 दिन बाद अचानक राज की तबीयत बिगड़ने लगी। मैंने ग्लास की दीवार से देखा तो सभी नर्स और डॉक्टर अतुल भी दिन रात भागते हुए उनकी देखभाल कर रहे थे। बार बार पूछने पर बताया कि हालत नाजुक हो गई है, पर मेरे इस तरह शीशे से झांकते रहने के कारण नर्सें बड़ी परेशान रहती थी। खासतौर कर रात को कई बार मैं नर्सों को राज के इलाज के बारे में पूछती रहती। नर्सों के संतोषजनक जवाब न मिलने पर मैं गुस्सा हो जाती। डॉक्टर अतुल की उन दिनों रात्रि शिफ्ट थी, शायद नर्सों ने परेशान होकर डॉक्टर अतुल से मेरी शिकायत कर डाली, क्योंकि रात जब मैं आईसीयू के बाहर खड़ी राज को देख रही थी, डॉक्टर अतुल मेरे पास आए, मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा और बड़े प्यार से हाथ पकड़कर मुझे अपने प्राइवेट वार्ड में ले गए। बैठा कर डॉक्टर अतुल मुझे समझाने लगे कि अस्पताल का पूरा स्टाफ, वो खुद भी मेरे पति का 24 घंटे ख्याल रख रहे हैं, पर मुझसे बात करते हुए डॉक्टर अतुल की नज़र चोरी चोरी कई बार मेरे स्तनों पर चली जाती और वो क्या बोलना है भूल ही जाते। डॉक्टर अतुल अपने आप को बहुत रोकने पर भी अपनी आँखों को मेरे बदन पर जोर जोर से दिखाते। मैं उनकी दुविधा भली बात ही समझती, पर उस समय मेरा खुद का ध्यान मेरे पति की सेहत पर था। मैंने डॉक्टर अतुल के दोनों हाथ पकड़ मेरे हाथों में कहा, ठीक है डॉक्टर, मैं आपकी बात समझती हूँ, पर क्या करूँ, राज का ऐसा हाल और उनके पूरे शरीर पर इस तरह इतनी सारी नलियाँ लगी हुई है, मुझसे देखा नहीं जाता। डॉक्टर अतुल मेरी बगल में पलंग पर बैठ गई और अपने आप को संभालते हुए मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थमाकर बहुत प्यार और सौजन्य से बोले, मिसेज राज आप फिक्र ना करें, यह चंद दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद सब हट जाएगा। ये कहते हुए मेरी आंखों में आंखें मिला नहीं पा रहे थे, शायद उन्हें डर था कि कहीं फिर से उनकी नज़र मेरे मादक अंगों पर न चली जाए। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर वो मेरे एकदम करीब आकर बड़ी विनम्रता और प्यार से धीमी आवाज़ में मुझे ढांढस दिलाते हुए बोले, मिसेज राज, आप रात रात पर जाकर आईसीयू के बाहर खड़े खड़े अपने पति को देखना बंद कर दीजिए। वो होश में आकर कभी आपको एक बार खड़े हुए देखते तो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं खुद आपके पति के सगे भाई की तरह देखभाल करूँगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, दिन में तो मैं खुद ही पता लगा लूँगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, पर रात को कैसे मैं उनका हाल जानूँ? ये नर्स रात को अपने काम में लगी रहती हैं, सो जाती हैं, कुछ बताती तो नहीं हैं। डॉक्टर साहब मेरी तरफ हैरानी से देखते रहे। कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, ठीक है, आप अपने इस कमरे में ही रहिए, मैं खुद रात को आपको हर 2-3 घंटे में मिलकर बताता रहूँगा उनकी हालत। मैंने हाँ कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि मुझे ऐसे मेरे पति का हालचाल मालूम होता रहेगा। डॉक्टर अतुल को देखकर मेरे दिल में एक भूचाल सा उमड़ जाता था। रात रात पर जागने के कारण मुझे चक्कर से भी आने लगे थे। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और मैं अचानक तुरंत पलंग पर लुढ़कने लगी। लपक कर डॉक्टर ने मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और पलंग पर लेटाया। बोला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वो अपना स्टेथोस्कोप मेरी छाती पर लगा कर मुझे चुप करने लगे। डॉक्टर अतुल का हाथ मेरे स्तनों के ऊपर महसूस कर इस तरह का व्यवहार देखकर मैं भावुक हो उठी। मैंने अपने हाथ लंबे कर डॉक्टर अतुल को खींच लिया। बिना कुछ सोचे समझे उनके गले में अपनी बाहें ढालकर बैठते हुए कहा, डॉक्टर देखिए, मेरा दिल कितनी तेज़ी से धड़क रहा है। डॉक्टर अतुल मेरी भावुकता देखकर स्तब्ध से मुझे देखने लगे। शायद ये उनका पहला अनुभव था जब किसी अनजानी हॉट मैरिड वूमेन ने उन्हें किस तरीके से अपनी छाती से लगाया। डॉक्टर अतुल का मुँह मेरे स्तनों के ऊपर ही था। उनके गाल मेरे स्तनों को दबा रहे थे। उनकी आंखें मेरे स्तनों के बीच की बड़ी खाई पर केंद्रित हो चुकी थी। उनके गाल मेरे बड़े सख्त भरे स्तनों को देख रहे थे। ये महसूस कर मेरी टांगें ही ढीली होने लगी। मेरी जांघों के बीच में से प्रेम रस निसलने लगा। मैं आवेग और उद्वेग के द्वंद में फंसी ये समझ नहीं पा रही थी कि उस वक्त उत्तेजित हूँ या दुखी। डॉक्टर बहुत चक्के से इस भाव द्वंद को देख रहे थे। धीरे से शायद बड़े ही कचोटते हुए मन से वो मुझसे खिसक कर अलग होने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना सर नीचा कर उनकी ठुड्डी पकड़ कर ऊपर उठा कर आँखों में देखा और कहा, डॉक्टर, मैं और मेरे पति एक ही तरह से सोचते हैं। वो आपको मेरा ख्याल रखने को कहते हैं और मैं आपको उनका ख्याल रखने को कहती हूँ। आप मेरे जेठ हैं, मैं आपकी बहू के हक से मेरे पति के जीवन की भीख मांगती हूँ। डॉक्टर, आपका इस बहू पर पूरा हक है, आप मुझे बताइए, मैं वही कहूँगी। आप कहते हो तो मैं रात को आईसीयू के बाहर खड़ी रहकर पति को नहीं देखूँगी, पर उन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर अतुल ने ढांढस देते हुए कहा, मिसेज राज, हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं, मैं खुद उनकी देखभाल कर रहा हूँ। अतुल के प्यार और सहानुभूति के शब्द सुनकर मुझे हर बार शांति मिलती थी। तब मैंने उनकी तरफ घूम कर उनकी आँखों में आँखें मिलाते हुए कहा, डॉक्टर, मैं घुमा फिरा कर नहीं बोलूँगी, ये बार बार आप मुझे मिसेस राज क्यों कहते हैं? मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, जेठ का भी बहू पर एक पति के जैसा ही अधिकार होता है। आप मुझे नीना कहकर बुलाइए, मेरे पति ने मुझे बिना किसी पाबंदी के जो करना चाहूँ करने की हिदायत दी है। मैं आपके लिए सब कुछ, मतलब सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने 2 बार सब कुछ कहा और फिर मेरी बात डॉक्टर अतुल समझे या नहीं ये देखने के लिए मैं उनकी और बारीकी से देखा। डॉक्टर अतुल मेरे इस बर्ताव से काफ़ी अजीब से संकोच के साथ सहजता महसूस करते हुए मेरे दोनों हाथों को थमा कर बोले, ठीक है, चिंता मत करो, कुछ मत कहो। जब तुमने मुझे अपना जेठ बना दिया है तो फिर मुझ पर भरोसा रखो। मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरा कर्तव्य है। मैं वचन देता हूँ कि राज को कुछ नहीं होगा। मैंने देखा कि डॉक्टर अतुल ने तब मुझे तुम कहना शुरू कर दिया था। ये कहानी आगे और भी रोमांचक मोड़ लेगी। दोस्तों, सुनते रहिए।